हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत इस वक्त बिल्कुल अकेला है और वहां पर भानु या कोई भी उसके साथ नहीं है। उसकी गोद में बेहोश वसुंधरा है और विक्रांत उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो सामने की तरफ देखते हुए आगे चल रहा है और उसकी आंखें भी अब उतनी ज्यादा लाल नहीं हैं, ना ही उसे उसके चेहरे पर अब गुस्सा नजर आ रहा है। वो काफी शांत लग रहा है, इस तरह जैसे कि तूफान के आने से पहले की शांति हो, या फिर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ इस वक्त वही जानता है और कोई नहीं। कुछ देर बाद वसुंधरा की आंख खुली और उसने अपने चारों तरफ देखा और वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी, जो कि उसके राजमहल के बिस्तर की तरह आरामदायक और मुलायम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन आंखें खोलते ही चारों तरफ देखकर तुरंत ही वसुंधरा को समझ आ गया कि वो इस वक्त राजमहल में तो नहीं है। वो एकदम ही उस बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वसुंधरा को जगह राजमहल के ही किसी कमरे की तरह लग रही थी, लेकिन वो उतनी ज्यादा शानदार और खूबसूरत बना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी दिखने में ठीक ठाक ही था। लेकिन वसुंधरा को वहां पर बहुत ही अजीब सा लगा, और फिर जब उसे पर चली जाती की पूरी बात याद आई तो वो एकदम ही घबरा गई और बिस्तर से उठकर वहां से आगे की तरफ भाग। लेकिन वो बिस्तर से चारों तरफ चार कदम से ज्यादा आगे नहीं जा पाई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह भले ही देखने में बड़ी है, लेकिन वो किसी तरह के एक कोगले में कैद है जो कि कांच का है और उसे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो गोली से बस इतनी जगह पर ही आगे जा पा रही थी। उसने वहां से हर तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पर निकल नहीं पाई, तो वो फिर थक हार कर वापस बिस्तर पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ये कहां पर हैं हम? किसी जाल में फंस गए हैं या फिर कोई शैतानी चाल है ये? और क्यों लेकर आया है वो विक्रांत हमें यहां पर? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? वसुंधरा ने अपने आप से ही ये सवाल किया, लेकिन उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिला। तो फिर से वो उठकर आगे आई और जहां पर भी वो आ सकती थी एकदम किनारे पर आई, और आगे उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसे भी एक अदृश्य दीवार जैसा महसूस हुआ। वसुंधरा ने उसे पहरी अपना हाथ रखा और फिर अपने हाथ से उसे दीवार पर मारते हुए बोली, बाहर निकालो हमें यहां से, कोई है, मदद करो हमारी, हमें यहां से बाहर निकलना है। वसुंधरा ने जैसे ही उसे दीवार को छूते हुए तेज आवाज में यह चिल्लाया तो उसे पहले तो कोई भी जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक हंसने की आवाज वहां पर गूंजी, और ये हंसने की आवाज कुछ जानी पहचानी है। कौन है यहां पर और क्यों हंस रहे हो तुम? हमें जाने दो, निकालो हमें यहां से, वसुंधरा ने फिर से इस तरह अदृश्य दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहा। तभी उसे अपने से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ विक्रांत नजर आया। वो अब उसे अच्छी तरह से पहचानती है, क्योंकि पिछले रात उसने ही वहां पर महल में आकर इतनी तबाही मचाया और फिर वही उसका अपहरण करके उसे अपने साथ यहां पर लेकर आया हुआ है। वसुंधरा की तरफ वो एकदम ही आगे आने लगा और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट है, तो वसुंधरा तुरंत ही अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गई, और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही विक्रांत ने बोला, कहीं नहीं जा सकती अब तुम यहां से, और कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें। अब अगले 15 दिनों तक यहां ही रहना है, उसके बाद ही शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। 15 दिन क्यों? 15 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है और क्या करने वाले हो तुम्हारे साथ? वसुंधरा ने बहुत ही ज्यादा घबराते हुए ये बात पूछी, तो उसकी बात सुनकर विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, राजकुमारी जी, आप तो इस तरह से सवाल कर रही हैं जैसे कि मैं आपके आगे पीछे लगे रहने वाला सेवक हूँ, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, मैं विक्रांत हूँ, विक्रांत शैतान का अंश, और शैतान का अंश ही नहीं, अब मुझे पूरा शैतान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम्हारी शक्तियां भी मेरी होगी और मैं बनूंगा शैतानी दुनिया का बेताज बादशाह। फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कभी कोई हार नहीं पाएगा, हर जगह बस मेरी ही हुकूमत होगी। उसके इस तरह से शैतानी हंसी रखते हुए ये सारी बात बोलने पर वसुंधरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उसे समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके इरादे वसुंधरा को बहुत खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने अपनी हिम्मत बटोरी और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा ये शैतानी मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता और तुम्हें कोई भी शक्तियां नहीं मिलेगी 15 दिन बाद, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है और ना ही इन शैतानी शक्तियों से हमारा कोई लेना देना है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। वसुंधरा ने जैसे ही ये बात बोली, विक्रांत के चेहरे की हंसी एकदम ही गायब हो गई। हंसते हुए वो रुक गया और सवालिया नजरों से वसुंधरा की तरफ ही देखने लगा, क्योंकि वसुंधरा ने अभी जो कुछ भी बोला शायद इस बात की उम्मीद विक्रांत को नहीं थी। राजमहल में राजा के बेहोश होने की वजह से सभी लोग उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और रानी भी उनके पास ही बैठी हुई है और अब तक राजा को होश नहीं आया है। बाकी भी कई सारे लोगों को अब तक होश नहीं आया है जो कि उन शैतानी शक्तियों की वजह से बेहोश हुए थे, लेकिन सबको राजा की फिक्र है और सब उनके लिए ही परेशान हो रहे हैं। और राजवैद्य को भी समझ नहीं आ रहा कि राजा को अब तक होश क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से दवाइयां दे दी और सारी कोशिश करके देख ली जितना भी वो अपनी तरफ से कर सकते थे, इसलिए अब उनके चेहरे पर एकदम मायूसी साफ नजर आ रही है। राजवैद्य ने अपना सर मायूसी से नीचे झुका लिया और बोले, माफ कीजिए महारानी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है महाराज को क्या हुआ है और इतने घंटे बीत गए हैं फिर भी अब तक महाराज को होश क्यों नहीं आ रहा है। राजवैद्य की ये बात सुनकर रानी कादंबरी को बहुत ही गुस्सा आई और वो अपनी जगह से एकदम ही उठकर खड़ी हो गई और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आप क्या बोल रहे हैं राजवैद्य जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप राजवैद्य हैं और ये आपका काम है, आपको कैसे भी महाराज को ठीक करना होगा, हम और कुछ नहीं जानते, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। राजवैद्य ने रानी को गुस्से में देखा लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए राजवैद्य ने फिर से माफी मांगते हुए कहा, हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख लिया, जितना हमारे वश में था उतना हमने किया है महारानी, बाकी आगे आपको पता है ये सब कुछ अलौकिक शक्तियों का किया हुआ है जिसके आगे चिकित्सा काम नहीं करती। राजवैद्य ये बात बोल ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, महारानी जी अगर इजाजत हो तो क्या हम कोशिश करके देखें। वो एक लड़की की आवाज़ थी और वो आवाज़ सुनते ही रानी कादंबरी ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवानी वहां पर उन सब लोगों के आगे खड़ी थी। उसकी बात सुनकर वीरेश और बाकी सब ने भी उसकी तरफ देखा। सबको अभी तक यही लग रहा था कि हमले की वजह से राजा को सर पर या और कहीं चोट आई होगी, इस वजह से ही राजा बेहोश है, इसलिए ही वो सारे लोग एकदम चुपचाप वहां पर खड़े हुए थे और किसी ने बीच में कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही राजवैद्य ने ये बात बोली कि उन काली शक्तियों के असर की वजह से महाराज इस तरह से बेहोश हुए हैं, तो फिर ये सुनते ही शिवानी ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगते हुए कहा। शिवानी की आवाज़ सुनते ही रानी ने उसकी तरफ देखा और बाकी सारे लोग भी उधर ही देखने लगे।
चंद्रिका भी वहां पर खड़ी है लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वसुंधरा के वहां पर न होने की वजह से वो पहले ही बहुत परेशान है और उसे राजकुमारी की सबसे ज्यादा याद आ रही है और उसे ये भी नहीं पता है कि वसुंधरा को कौन, कहाँ और क्यों लेकर गया है, क्योंकि वो विक्रांत को देख ही नहीं पाई। उसके कमरे से बाहर आने से पहले ही वसुंधरा वहां महल से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर महल में और किसी को भी राजकुमारी की कोई फिक्र क्यों नहीं है। सब यहां तक रानी माँ भी सिर्फ राजा की वजह से ही परेशान हैं और वसुंधरा वहां पर नहीं, इस बात से किसी को इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। टूगी कंटिन्यूड।